बम्बई की भाषा भी ऐसी होती है कि उन्होंने कहा कि ये मेरे चेक जो है ना वो बैंक में डाल के आ जाओ। मैं गया और बैंक की खिड़की से ऐसे
ये कमाल है।
चेक चेक और वो डाल दिया स्लिप मैंने और चला आया। अब उन्होंने कहा कि क्या चेक डाल दिया? मैंने डाल दिए। कुछ देर बाद फिर फोन आया, क्योंकि वो बड़े सेठ थे तो बैंक वालों ने फोन किया, भाई आपकी ये सब चीजें पड़ी हैं
पड़ी मिली जमीन पे।
तो
हाँ
उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम कैसे डाल के आया? मैंने कहा आपने बोला डाल के आ जाओ, मैं डाल के आ गया। उन्होंने वो काम भी मुझसे छीन लिया कि ये भी तुम्हारे बस की नहीं है।
तो पहले पहले पहली नौकरी फिर क्या की होगी यहाँ पर?
बस पहली नौकरी यही थी कि चाय बोल दो, पानी बोल दो, चेक डाल दो। यही
अच्छा,
नौकरी थी मेरी।
जब हम लोग कलाकारों से बात करते हैं तो वो ये बताते हैं मैंने ये किया ये किया, मैंने फुटपाथ पे सोया, मैंने रिक्शा चलाया, मैंने मजदूरी की। आपने ऐसे कौन कौन से काम मुंबई आने के बाद किए?
मुंबई आने के बाद देखिए साहब, मैंने ना तो रिक्शा चलाया ना मैंने कुछ किया। मैंने एक गुरु मंत्र था मेरे पास कि मैं कुछ भी करूं लेकिन लीजेंड लोगों के साथ करूं,
वाह,
क्योंकि उनकी छत्र छाया में मैं रहूंगा तो मेरा बहुत कुछ हो जाएगा,
सोहबत का
सौबत का
असर
असर
जो।
होता है। ऐसा मैंने पढ़ा था,
बिल्कुल
ऐसा
सही।
मैंने सुना था। यहां जहां मैंने आपको बताया ग्रांट रोड पे काम करता था, वहां से एक अकाउंटेंट मुझे लेके आया शंकर जयकिशन के रूम में,
अच्छा,
और वहां मुझे नौकरी मिली। अब सोचिए मेरा वो ख्वाब पूरा हो रहा था जो कभी खेतों में देखा
क्या
था।
बात है,
देखा था।
कि अब आप सुनिए शंकर जयकिशन, तो
बिल्कुल
उनका ये
बिल्कुल,
रूम मैं देख रहा था, क्या रूम था।
बाप रे,
बड़े बड़े गद्दे, बड़े बड़े तकिए, दो हारमोनियम बड़े ऊंचे, और पूरा म्यूजिक रूम सजा हुआ। आज मैं वहां था, मुझे लगा मैं स्वर्ग में आ गया।
क्या ये कहाँ पे, मुंबई में?
ये फेमस महालक्ष्मी,
हाँ
तो मुझे लगा कि मेरा ख्वाब तो पूरा हो गया, अब तो मजा आ गया। फिर वहां पे लता मंगेशकर जी, आशा जी,
वाह,
मोहम्मद रफी साहब, मुकेश जी, किशोर कुमार, शैलेंद्र जी, नीरज जी, हसरत जयपुरी साहब,
सारे लेजेंड्स,
मैं जो भी आदमी आता था मैं उसको यूं ही देखता रहता था।
बाप
और मेरी कोशिश ये होती थी कि उनके लिए चाय मैं लेके जाऊं
रे, वाह,
ताकि उनके करीब जाऊं
और नजदीक से देख,
चेहरा
और
दिखे उनको।
फिर उनका वो कप उठाऊं। तो ये मैं, और फिर कभी कभी मैं उनको लिफ्ट तक छोड़ने भी आता था।
जी
बात कुछ नहीं होती
हाँ
थी,
हाँ
अब
हाँ
कोई पूछ ले भाई तुम्हारा नाम क्या है, बस इतनी बात,
मजा आ
ज्यादा से
जाएगा।
ज्यादा नाम बताना होता था।
हाँ
तो ये मैंने पहला काम यहां किया।
हाँ अच्छा,
उसके बाद एक दिन शंकर जी ने हसरत साहब को बोला कि हसरत मियाँ ये लड़का है, ये भी कुछ लिखता है, जरा इसको सिखाओ, अच्छी इसकी सोच है।
अच्छा
तो हसरत साहब ने बोला कि ठीक है तुम मेरे घर आ जाओ। मैंने साहब आपका घर कहाँ है? वो खार में रहते थे, कैलाश
जी
बिल्डिंग।
जी
तो उन्होंने मुझे बता दिया। अब मैंने सोचा कि शंकर जी के यहाँ क्या था, आप कुछ भी खाओ कुछ भी करो सब बिल शंकर जी देते थे। वहां पे कम से कम 15-20 लोग थे, हम
अच्छा
सबका खर्चा वो उठाते थे। तो अच्छी वाली 2-3 टाइम की रोजी रोटी चल रही है अपनी, खाना तो मिल ही रहा है ना। अब मैं वहां जाऊंगा तो फिर क्या करूंगा? तो मेरे को इजाजत मिली कि तुमको जब भी जाना जाओ सोने के लिए इधर आ जाओ।
वाह,
तो मैं हसरत साहब के यहाँ जाना मैंने शुरू किया। और ये एक इत्तफाक की बात है, या समझिए मेरे पूर्वजों का ये आशीर्वाद है, कि हसरत साहब उस वक्त एक ऐसी बीमारी से गुजर रहे थे कि डॉक्टर ने बोला था कि आप इनसे जितना ज्यादा बात करोगे इनको फायदा होगा।
अच्छा
ओके, हर्पिस नाम की कोई बीमारी है वो।
अच्छा
अब मैं मिल गया उनको, अब मेरे को वो मिल गए, तो हम
कमाल है।
ऐसी बस बैठे बैठे पुरानी सब बातें करते रहते थे। और हसरत साहब ने मुझे सिखाया कि लिखा कैसे जाता है। हम जब आए थे 300 गाने लेके आए थे, हम आज मैं पढ़ता हूं तो हंसता हूं कि यही सोच के आए थे तो क्या होने वाला था। तो हसरत साहब ने बाकायदा मुझे लिखना सिखाया और कैसे गीत लिखे जाते हैं। वो हमेशा एक ही चीज बोलते थे कि बेटा लिखावट में दिखना चाहिए। उन
अच्छा
दिनों तक टीवी भी नहीं आया था,
जी
हाँ,
बिल्कुल,
तो हम मैं परेशान था कि
दिखना क्या क्या दिखना।
दिखेगा क्या। तो हमने एक दिन उनसे पूछा कि हसरत साहब सुनाई देना तक तो ठीक है, दिखाई कैसे देगा?
दिखाई, क्या बात है।
तो उन्होंने कहा देखिए मैं मेरा गाना सुनाता हूं, ए नरगिज़े मस्ताना बहारो फूल बरसाओ। तो आपको लगता नहीं कि इस गाने में आप बहारे हैं, फूल बरस रहे हैं, हीरो हीरोइन बैठे हैं, ये सब
जी
दिखता
जी
है ना?
वो दिखता है,
ऐसा आभास गाने में होना चाहिए।
क्या बात है।
और गाने की अपनी एक कहानी होनी चाहिए,
वो कहानियां याद रह जाती हैं,
वो चीज हमको याद रह जाती है। तो खैर आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने उनसे जो भी सीखा उनकी बदौलत ही आज मैं सब कर रहा हूं।
ये अनु मलिक साहब के कुछ थे ना,
ये अनु मलिक साहब इनके भांजे हैं।
भांजे हाँ। तो पहली देखा जाए तो शंकर जयकिशन साहब, उसके बाद सर से मुलाकात, तो दो दिग्गज से आपकी मुलाकात हुई
जी।
तो सर गीतों का सिलसिला कहाँ शुरू हुआ, लेखनी?
देखिए गीतों का सिलसिला मैं क्या बताऊं, उससे पहले एक चीज बताता हूँ।
पहला बड़ा ब्रेक
हाँ जी।
पहला बड़ा ब्रेक के बीच की एक बात है
जी,
और वो बात है जब तक मैं वो नहीं बताऊं तो मैं नहीं समझता हाँ। कि मैंने कुछ किया है
जी।
किशोर कुमार जी जिनको मैं साहब बोलता हूं आज भी,
बहुत
दिन भी, इनके पास मैंने 18 साल काम किया।
18 साल।
और उस 18 साल में मैंने गीतों की विधा, डायरेक्शन की विधा, प्रोडक्शन की विधा सब कुछ सीखा, बाकायदा सिखाया उन्होंने और मुझे तनख्वाह दी बहुत अच्छी।
अरे वाह।
और उनका एक सबसे अच्छा किस्सा है कि वहाँ पे जो है ना सबको टोकन मिलता था लंच के लिए
जी,
मुझे नहीं मिलता था
उनके बंगले पे।
बंगले पे वो शूटिंग हमेशा बंगले पे ही करते थे।
अच्छा।
बाहर नहीं जाते थे
जी।
तो हम मैं बैठा हुआ था तो उनको ऊपर से, पहले CCTV नहीं थे
जी,
तो किशोरदा जो है ना वो किसी खिड़की से झांक के पूरा थप देख लेते थे
सब पे नजर।
ऐसा कांच फिट किया हुआ था कि मेन गेट भी दिख जाता था।
बाप रे।
तो उन्होंने देखा कि सब गए हुए हैं यही एक बैठा हुआ है, तो ऊपर बुलाया तुम क्यों नहीं गए? ऐसा मेरे को वो टोकन नहीं देते हैं लोग। क्यों? ये तो पता नहीं।
अच्छा
पगार कितनी है? पहले दिन जब आया था तो मेरे को बोला था पगार मत मांगना।
अच्छा।
पगार मारुति साहब मुझे लेके गए थे।
अच्छा।
जो कॉमेडियन है
जी जी जी,
उन्होंने कहा था तुम पगार वगैरह मत मांगना जब मैं बात करूंगा। तो साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है, तो फिर तुम काम क्यों करते हो जब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता? तो मैंने कहा साहब ऐसा है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं और मैं फिल्म लाइन में गीत लिखने आया हूं, अब आपके यहां जो मुझे रह के सीखने को मिल रहा है
वाह,
ये तो मैं तो और तो कहीं सीख ही नहीं सकता हूँ, ना तो मैं किसी कॉलेज में जा सकता हूँ, ना तो कोई मुझे सिखाएगा, यहाँ मेरे को जो मिल रहा है उतना ही बहुत है, बाकी तो देखा जाएगा। तो साहब ने तुरंत मैनेजर को बुलाया और कहा कि इनको पिछले 3 महीने का पैसा दो और 1000 रुपया, और इन जो भी है, तो उसको लगा कि मैंने शिकायत की है।
ओह माय गॉड।
18 साल के बाद मैं वहां से डायरेक्टर बन के निकला।
वाह। 18 साल साथ में,
18 साल में उनके साथ में था। और इसी दौरान मोहम्मद रफी साहब, लता मंगेशकर, ये सब सिंगरों के घर मेरा आना जाना डेली का अपने काम से था। तो जो ब्रेक है, अगर आप लिरिक राइटर का ब्रेक पूछ रहे हैं
जी,
तो थोड़ा लंबा है, लेकिन ये मुझे ब्रेक मिला एज ए डायरेक्टर।
सुधाकर जी आपकी एक बुक रिलीज हुई है, गीतकार सुधाकर शर्मा
जी,
मैं उसके कुछ पन्ने पढ़ रहा था
जी,
तो उसमें बड़ा अच्छा फनी सा वाक्या देखने को मिला जब आप किशोरदा के साथ थे
जी,
तो कुछ क्लैप से जुड़ा हुआ था, उसके बारे में बताइए।
वो क्या था कि होता है कि पहले जो है ना क्लैप देते थे चौक से लिखा करते, तो एक्चुअल क्या होता है कि जब उसको लिखते हैं तो लिखने के बाद उसको पहले एक फट्टा मार के झाड़ लेते हैं
जी, जी।
उसके बाद क्लैप दिया जाता है
जी।
लेकिन हर जगह छोटा छोटा कुछ ना कुछ चलता है। जो मेरे सीनियर थे वो शायद नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ काम करूं
जी।
मेरे को ये नहीं बताया उन्होंने कैसे मारना है, वो तो बता दिया
जी,
तो दादा मुनि के फेस पे मुझे क्लैप देना था। अब मैंने क्लैप दिया तो उनकी आंखों में तो चला गया चौक और वो भड़क गए, किस किस को बुला लेते हैं, कौन है ये, बाहर करो इसको यहाँ से। मेरे को समझ में नहीं आई कि मैंने किया
क्या हुआ,
लेकिन मेरे को सेट से निकाल दिया। लेकिन मैं गया नहीं बाहर, मैं उधर जिधर उनका वॉचमैन बैठता उधर जाके मैं भी बैठ गया। फिर दादा मुनि को थोड़ी देर में जब उन्होंने फिर से किधर गया वो, तो बोला बाहर बैठा, बुलाओ उसको। तो दादा मुनि ने मुझे बुलाया और कहा कि पूछा मेरे को कौन हो क्या है, तो मैंने बताया उनको, तो उन्होंने दादा मुनि ने खुद क्लैप लिखा झाड़ा और मेरे फेस पे मार के मुझे बताया।
वाह।
क्या बात है।
तो वहां से आपने डायरेक्शन वाली जो
सबसे पहला डायरेक्शन मुझे दादा मुनि ने
क्या बात
इस तरह से सिखाया। किशोरदा के साथ तो मैं सीख ही रहा था। तो ये जब मेरे को पहला ब्रेक मिला एज ए डायरेक्टर
जी,
मैं पहले शंकर जयकिशन के पास गया।
अच्छा,
शंकर जयकिशन के शंकर जी
जी।
और मैंने कहा कि साहब मुझे एक पिक्चर मिली है, वो मुझे भूल भी गए थे।
अरे बाप रे।
मैंने कहा मुझे एक पिक्चर मिली है और मैं चाहता हूँ उसमें म्यूजिक आप दें
जी।
तो उन्होंने कहा तुम डायरेक्टर हो? कहा अच्छा, हीरो हीरोइन कौन है? मैंने कहा हीरो भी आप हैं हमारे, कहानी भी आप ही के हिसाब से मैंने लिखी है। मैंने कहा मैं आपके यहाँ काम करता था, पूरा उनको याद आ गया। तो उन्होंने कहा कितने पैसे लाए? तो हम 21,000 रुपये लेके गए थे शगुन के। मैं कहा 1 रुपया और रखो इसमें। तो हमने 1 रुपया और रखा, उन्होंने 1 रुपया लेके उसी 1 रुपये में पूरी पिक्चर की।
एक रुपये में। वाह वाह।
और जिसमें उन्होंने मतलब मन्नाडे साहब को गवाया, किशोरदा को गवाया, उसमें सब बड़े बड़े सिंगरों को वही उन्होंने ही सब अरेंज किया मेरे लिए।